नमस्कार आदाब श्रोताओं, मोबाइल वाणी के बेहद लोकप्रिय और खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं वैसे मुद्दों के बारे में जिससे आपकी जिंदगी का सीधा सरोकार है, वैसी खबरें जो जिंदगी की आपाधापी में हमसे छूट जाती हैं या खबरों की सुर्खियां नहीं बन पाती। तो आइए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
नमस्कार आदाब श्रोताओं, मैं अंजलि आज खबर लेकर आई हूँ। सामाजिक सुरक्षा कोड कर्मचारियों को पेंशन, पीएफ और स्वास्थ्य योजनाओं का चयन करने दे सकता है। श्रम मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत सरकार से स्वनियोजित और कृषि श्रमिकों सहित देश के सभी श्रमिकों के लिए पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए योजनाओं का एक गुलदस्ता तैयार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये योजनाएं सरकारी हो सकती हैं। पेंशन, बीमा और भविष्य निधि के क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों का संचालन कर सकती है। प्रस्तावित योजना के तहत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के तहत सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से श्रम मंत्रालय को पहले चरण में शामिल करने की योजना के 3 लाभों पर प्रस्ताव पर कोई योजना से अनिवार्य रूप में चयन करना होगा। इसके अलावा यह ईपीएफओ के तहत ईपीएफ और ईपीएस सहित सभी मौजूदा योजनाओं की पहचान और मौलिकता बनाए रखेगा। एक बार सोशल सिक्योरिटी कोड होने के बाद ग्राहकों को उनके मौजूदा योजनाओं के साथ जारी रखने का विकल्प होगा या किसी दिए गए लाभ के तहत प्रत्येक योजना पर रिटर्न का मूल्यांकन करने के बाद अपने पूरे फंड के साथ दूसरी योजना में माइग्रेट करना होगा। उदाहरण के लिए कर्मचारी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम या सरकार द्वारा उठाए गए निजी खिलाड़ी द्वारा दी गई किसी भी अन्य पेंशन योजना की सदस्यता लेने से पेंशन का लाभ उठाया जा सकता है। इसी प्रकार भविष्य निधि के लिए खोजे जाने वाले विकल्पों में ईपीएफ, पीपीएफ या जीपीएफ के लिए योगदान शामिल है, जबकि कर्मचारियों को जमा राशि की सदस्यता लेकर बीमा का लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि इससे ग्राहकों को लचीलापन मिलेगा, यह भी नियोक्ताओं के लिए अनुपालन लागत को कम करने की उम्मीद है। नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत एक खाते के लिए केवल एक अनुपालन दर्ज करने की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में एक नियोक्ता को ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और उसके सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा के लिए अलग अलग अनुपालन दर्ज करना होगा।
धन्यवाद अंजलि। दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज मैं बात करने वाला हूं भारत में नियम कानून के दायरे में स्टेम सेल उपचार के बारे में। दोस्तों, भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 2018 के अनुसार स्टेम सेल के साथ साथ स्टेम सेल आधारित उत्पादों को दवाओं के रूप में विनियमित करना चाहते हैं, जो उन्हें 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मजबूती से लाते हैं। इसका मतलब यह है कि स्टेम कोशिकाओं के सभी नैदानिक उपयोग और उनके उत्पादों को पहले सुरक्षा और प्रभावकारिता साबित करने के लिए नैदानिक परीक्षणों का समर्थन करना होगा और फिर निर्माण और बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस दिशा निर्देशों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे काम करने के तरीकों में स्पष्टता आएगी। ज्ञात हो कि अमेरिका, जर्मनी और जापान के विपरीत जहां मृत्यु सहित प्रतिकूल प्रभाव दर्ज किए गए हैं, वहां कोई भी रोगी भारत में नुकसान के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए अभी तक आगे नहीं आया है। यही वजह है कि इस तरह के उपचार की पेशकश करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि दुनिया भर के नियामकों ने उन्हें नियंत्रित करने और स्टेम सेल शोध और संभावित उपचार की जटिलता को समझने के लिए लंबी दूरी तय की है। नतीजतन विकसित और विकासशील देशों ने समान रूप से क्लिनिक सेल आधारित उपचार और इलाज का वादा करने वाले क्लिनिकों और डॉक्टरों का विस्तार देखा है।
धन्यवाद राजीव जी। और मैं मधु आज जिस विषय को लेकर आई हूँ वो है एक ऐसा ऐप जो भारतीयों को अपने राजनेताओं को रेट करने देता है। अमेरिका की स्वीकृति रेटिंग प्रणाली से प्रेरित 27 वर्षीय धारावाहिक उद्यमी और वॉर्टन स्नातक प्रथम मित्तल ने नेता नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो भारतीय मतदाताओं को अपने निर्वाचन प्रतिनिधियों की निगरानी करने और उन्हें जवाबदेह रखने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए सार्वजनिक समर्थन गेज करने के लिए अनुमोदन रेटिंग का उपयोग किया जाता है। मित्तल के अनुसार भारत में अनुमोदन रेटिंग या लोकप्रियता के आसपास शायद ही कोई पारदर्शी डेटा है। ऐप को राजस्थान के अजमेर और अलवर निर्वाचन क्षेत्रों में फरवरी के उपचुनाव के दौरान पायलट किया गया था। इसे मई में विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में भी तैयार किया गया था। अब 2019 के आम चुनाव के लिए नेता राष्ट्रीय स्तर पर जाने जा रहे हैं। अभी तक राजस्थान और कर्नाटक में नेटा के 2.5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं। अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदाता जल्द ही इस साल के अंत में मतदान करने वाले अन्य राज्य भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी का अनुमान है कि अकेले इन 3 राज्यों को अपने ऐप पर लगभग 10 मिलियन वोट मिलेगा। 2019 के आम चुनावों में यह लगभग 100 मिलियन वोट होने की उम्मीद है। फॉरेस्टर रिसर्च के दिल्ली स्थित एक विश्लेषक सतीश मीना के अनुसार, चुनाव में अपनी भूमिका के कारण वैश्विक मीडिया वैश्विक स्तर पर बड़ी जांच में है। सोशल मीडिया पर परिचालन का स्तर बहुत बड़ा हो सकता है और प्रभावों का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। बावजूद इसके विश्लेषकों का मानना है कि ऐप भारतीय राजनीति में जगह सुरक्षित करेगी, क्योंकि राजनेता अब तेजी से तकनीक और सोशल मीडिया समझदार बन रहे हैं।
तो दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास खबरें। अगर आपके आसपास या आपके क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं जो जरा हटके हैं, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल में नंबर 3 दबाकर और साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए अभी दबाएं नंबर 5। तो सुनना न भूलें हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खबरें जरा हटके।